ये आकाशवाणी है। अब आप नईम अख्तर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। श्री मोदी वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर में करीब 61 अरब रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वो दोपहर बाद करीब 2 बजे काशी पहुंचेंगे और आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी के सिग्रा स्टेडियम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार कृषि उपज की लागत और खुदरा कीमतों के बीच भारी असमानता को दूर करने के लिए समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जहां किसान 5 रुपए प्रति किलो पर सब्जियां बेचते हैं, वहीं उपभोक्ताओं को 50 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। इस अंतर को कम करने की जरूरत है। श्री चौहान ने अगले महीने कृषि चौपाल शुरू करने की योजना की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान को प्रयोगशाला से खेतों तक पहुंचाना है। बिहार में हाल की बाढ़ से नुकसान का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम 3 दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंचेगी। 7 सदस्यीय टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी कर रहे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बताया कि टीम आज और कल प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और 22 अक्टूबर को राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। राज्य सरकार ने केंद्र से 3,638 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। राजस्थान के धौलपुर में कल रात सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना स्लीपर बस और ऑटो रिक्शा में टक्कर के कारण हुई। मृतकों में अधिकतर बच्चे और महिलाएं थीं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस चालक और कंडक्टर की हालत गंभीर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की है। इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ जल प्रयोक्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी की श्रेणियां शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में ओडिशा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश दूसरे और गुजरात तथा पुदुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी के साथ साथ नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। गजा के उत्तरी भाग बेतलाहिया में इसराइल के हमले में 70 से अधिक लोग मारे गए हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इस बीच इसराइली सेना ने हमास के 70 से अधिक लोगों के मारे जाने के दावे के पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि इस संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने पाकिस्तान में धार्मिक असहिष्णुता के प्रसार, हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यक लड़कियों के जबरन अपहरण तथा धर्मांतरण, मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने पर गंभीर चिंता प्रकट की है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समिति की विस्तृत रिपोर्ट में शिया मुसलमानों, ईसाइयों, अहमदियों, हिंदुओं और सिखों पर बढ़ते हमलों तथा धमकियों से निपटने में पाकिस्तान सरकार की अक्षमता पर भी सवाल उठाए गए हैं। दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से 570 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। इनके अलावा 108 रेलगाड़ियां लातूर, सावंतवाड़ी रोड, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, नांदेड़ और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों के लिए संचालित की जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता अब भी खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 10 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 265 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि पराली और कचरा जलाने से वायु गुणवत्ता में और गिरावट आने की आशंका है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज न्यूजीलैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने पिछली बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया। 2016 के बाद पहली बार महिला T20 विश्व कप में कोई नया विजेता होगा। बेंगलुरु में न्यूजीलैंड ने भारत से पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 8 विकेट से जीत लिया है। मैच के 5वें दिन न्यूजीलैंड ने जीत का लक्ष्य 27 ओवर और 4 गेंद में केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।